ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली अगर आपको याद हो तो बाबा ने कहा कि जब तुम पावन बन जाएंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भाई बोल रहे थे तो ये बात एकाएक स्ट्राइक हुई कि बाबा ने आज ये कहा है, और उससे पूर्व भी बाबा की अव्यक्त रूप की मुरलियों में ये इशारे हमें मिलते रहे हैं कि बच्चे तुम संपन्न बनो, तुम संपूर्ण बनो तो ऑटोमेटिकली विनाश समीप आ जाएगा। तो सवाल उठता है, हमारा पुरुषार्थ किस लिए है? क्या हमारा पुरुषार्थ अंतिम समय को लाने के लिए है, या हमारा पुरुषार्थ स्वयं को पावन बनाने के लिए है? दोनों एक जैसी बातें हैं। पावन बनेंगे तो अंतिम समय समीप आएगा। या हम यूं समझें कि ये अंतिम समय है, अंतिम समय है और अब और अधिक समय अवेलेबल नहीं है। आज हमारी मीटिंग थी तो मीटिंग में ये बात निकली कि इस वर्ष, जबकि कुछ भी अभी निश्चित नहीं है, तो हमारा पुरुषार्थ या ब्राह्मणों का जो सेल्फ प्रोग्रेस है वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सबके मन में एक लात और एक तात है कि अब हम संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। ऐसा है, समझते हैं ऐसा है? जिनके मन में ये बस रहा है हमें घर वापस जाना है और ये दृढ़ संकल्प संपन्न बनना है, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से जिनको ये आता है वो हाथ उठो। माताओं को ज्यादा आता है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो क्या आप और युग की कल्पना करते हैं? और युग मैं उसको कहती हूं वो पीरियड, जो एक जैसा पीरियड हो उसकी कल्पना करते हैं, आएगा? या आया हुआ है? आया हुआ है या आएगा, बोलो। आया हुआ है। आज के युग में अनिश्चितता है, असुरक्षा है। प्रकृति के प्रहार और वार हैं, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है, अव्यवस्था है, इंस्टेबिलिटी है, इससे ज्यादा और भी जोड़ लीजिए, बहुत कुछ जुड़ जाएगा। बाबा अपार दुखों की लिस्ट कलयुग की बनवाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बनती है। परंतु इसके अतिरिक्त और ऐसा कौन सा समय आने वाला है जिसमें और कुछ होगा? हर चीज अति पर है, हर चीज, मनुष्यों की चाह भी अति पर है, सोल्यूशन की डिमांड भी अति पर है। अगर परीक्षा अति पर है तो समस्या का समाधान ढूंढने की प्रवृत्ति भी अति पर है। जब हर चीज अति पर है उसके बाद क्या होता है? अति के बाद तो इति होती है ना, अति के बाद तो आगे कुछ नहीं चलता, इति। तो प्रश्न उठता है, ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो अपने अंतिम पेपर को, अंतिम समय को हम प्यार से स्वीकार कर सके, उसको तो बाबा ने उस अंतिम समय के लिए जो विशेष पुरुषार्थ है कुछ एक बातें जो बताई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर वन, आज भट्टी में ये पक्का करके जाइएगा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये स्लोगन मम्मा का दिया हुआ है और मम्मा की बॉडी तो यंग थी, मम्मा कोई बुजुर्ग नहीं थी, यंग थी, फिर भी मम्मा ने अपने लिए जीवन में पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए स्लोगन दिया, अंतिम हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। जब व्यक्ति ये समझता है ये मेरी अंतिम घड़ी है तो सबसे पहली चीज उसके मन में क्या होती है? अब आपको मैं सीन क्रिएट करके बताती हूं। मानो किसी को गैलोस पर फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है, उससे पूछते तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, पूछा जाता है ना, कितने लोग जवाब देते हैं उस समय? कोई जवाब देते हैं? क्या कहते हैं? अब हमारी अंतिम घड़ी है ना, उससे पूर्व उनकी इच्छाएं होती होंगी, लेकिन जब फांसी के फंदे पर है उस समय कहते हैं हमारी कोई इच्छा नहीं है। कारण इस सृष्टि से मेरा पाठ समाप्त हो रहा है। जब पाठ समाप्त होने को है, हम तो ज्ञानी तो आत्मा है ना, तो हमें तो पता है, लेकिन उस बंदे को तो नहीं पता ना। हमें पता है कि हमने भविष्य में और बेटर पार्ट प्ले करना है, क्राउन प्रिंस का पार्ट प्ले करना है, उसको तो नहीं पता। हमारी स्थिति आज की डेट में पूरी संपन्न होनी चाहिए। पानी का ग्लास भरा हुआ है, आप उसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं। अपने आप से हम ये पूछें, क्या मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न हूं, या अभी कोई इच्छाएं मेरी शेष है, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, क्या कहेंगे? सर्व प्राप्ति संपन्न हूं, तो पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था हर घड़ी अंतिम घड़ी, दूसरा फॉर्मूला स्वयं को सर्व प्राप्ति संपन्न, तीसरा इच्छा मात्रम अविद्या। अब हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, कब तक रखेंगे इच्छाएं? आज सवेरे की मुरली थी, पाना था सो पा लिया, आती ना, परवाती पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की, अब बाकी पाना क्या रहा? अब अपना पल्लू इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल छूटा हुआ हो, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। देखिए, जब तक फल तैयार नहीं होता तब तक वो धरती से वृक्ष से लेता रहता है, जब तैयार हो जाता है तो वो छोड़ देता है, पक जाता है। इसलिए एक चीज की चेकिंग करें, मोटे तौर पर नहीं करिएगा, सूक्ष्म रीति से चेक करिए, क्या मुझे कोई भी रस किसी भी प्रकार का इस दुनिया का आता है? रस नैनों का रस हो सकता है, कानों का रस हो सकता है, मुख का रस हो सकता है, संग का रस हो सकता है, जीभ का रस हो सकता है, इसको चेक करिए। अगर अब तक रस लेने की आदत है, रस अच्छा लगता है, तो स्पष्ट है अभी मैं आत्मा तैयार नहीं हूं। नीरस हो जाओ, पांचवी बात, अब हमें कोई नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, नए संबंध और नए हिसाब किताब। जो मेरे संबंध हैं उनसे निभाना है, परंतु हिसाब किताब नए नहीं बनाने। ये मेरा टाइम है अकाउंट क्लोज करने का, अकाउंट बनाने और बढ़ाने का नहीं। हिसाब किताब न बने उसके लिए मुझे क्या करना है? तीन चीजें, अकर्ता, अभोक्ता और असोचता। अकर्ता, कोई भी मेरा ऐसा कर्म न हो जिससे मेरे हिसाब किताब में प्लस माइनस आता जाए, न्यूट्रल होने चाहिए। जिसको हम कहते कर्म योगी, कर्म करते प्यारे बाबा की याद और आपके हर कर्म में बाबा की याद ऐसी समाई हो जो वो यादगार स्वरूप हो जाए। हर कर्म की पूजा, वो आपके कर्म ना हो, चरित्र हो, ब्रह्मा बाप समान। बाबा के कर्मों को हम कर्म नहीं कहते, हम चरित्र कहते। वो चरित्र तब होते हैं जब बिल्कुल न्यूट्रल होके हम कर्म करते हैं बाबा की याद में। बेहद सर्व के प्रति, यूनिवर्सल, बाबा के कर्मों में कहीं हम ये नहीं कहते कि बाबा, आज जैसे बाबा कह रहे थे, बाबा सबको समान पढ़ाते हैं, कोई को ट्यूशन तो नहीं देता ना बाबा, कोई स्पेशल तो नहीं पढ़ाता। ब्रह्मा बाबा के लाइफ में हमने देखा, बड़ी दादी के लाइफ में हमने देखा, कोई भी एक आत्मा से भी एक्स्ट्रा स्नेह कहो, एक्स्ट्रा कुछ को नहीं था। ये बाबा के कर्मों की विशेषता थी, तब तो चरित्र कहते हैं ना। यादगार, जैसे मथुरा में कौन सा मंदिर है, बांके बिहारी जी का या किनका, जिसमें हर कर्म की पूजा उनकी। अभी वो ब्रश कर रहे हैं उसकी भी पूजा हो रही है, अभी वो खेल रहे हैं अभी उनकी पूजा, अभी सो के उठे उसकी पूजा, हर चीज की पूजा, हर कर्म की पूजा। वो इतना अधिक उन्होंने, तो बात चल रही थी हर कर्म यादगार स्वरूप, इतना बाबा की याद समय हुई हो अपने सामने, आइडियल है, आदर्श है, उदाहरण है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा इतना आत्म स्थिति का अभ्यास करते थे, जो सामने आने वाले व्यक्ति को बाबा नहीं दिखाई देता था, बाबा की जगह किसी को कृष्ण, किसी को विष्णु, किसको कुछ, किसको कुछ दिखता था। वो कैसे, वो जो याद है आत्मिक स्थिति की इतनी पावरफुल, वो इस देह को समा लेती है, वो ऑरा, वो प्रभा मंडल, उसमें ये लौकिक देह समा जाती है, दिखाई नहीं देती। वैष्णो देवी का मिसाल, ये जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास, ये हमें अकर्तापन और अभोक्तापन में सहयोग देता है। निमित्त समझ के कर रहे हैं, उसमें मेरी लागत नहीं है, न्यारापन है, प्यारापन है, डिटैचमेंट। दूसरा अभोक्ता, हमें तो अभी सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति सब महसूस होता है। अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो भी हम कहते हैं देखा फलान ने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, महसूस करते हैं। तो हम भोक्ता हो गए ना, एक हिसाब से भोगी हो गए। अगर हमें कोई कहे आप भोगी हैं तो हम क्या कहेंगे, गाली दे रहे हो। और प्रैक्टिकल कर्म क्या है हमारे, भोग रहे हैं ना। ये अवस्था जो समानता की है, बैलेंस नहीं समानता, ये अवस्था हमारी अभ्यास से आएगी, आत्म स्थिति के अभ्यास से। आत्म स्थिति में है तो कोई बात हमको लगती नहीं है, मम्मा के पास जब बहने जाती थी, छोटी छोटी थी ना सभी दादियां, जब जाती थी तो मम्मा को, मम्मा उसने मेरे को ऐसे ऐसे कहा, मेरे को अच्छा लगा, बहुत फील हुआ मेरे। मामा कहती थी इधर आओ, मैं देखूं कहां लग गए। तो मैंने कहती थी मम्मा यहां थोड़ी लगा है, वो तो अंदर में लगा है ना। तो मम्मा समझाती थी, मम्मा और बाबा ऐसा नहीं, इन्होंने सामना नहीं किया है, बहुत सामना किया है। पेपर तो हर एक को देना है ना, बिना पेपर के तो बाबा हमको प्लेट में रख करके ताज देने वाला नहीं है। परीक्षा तो देनी पड़ेगी, अपने आप को काबिल प्रूव करना पड़ेगा। तो प्यारे बाबा मम्मा अभोक्ता, यहां तक शरीर को भी कष्ट है ना, तो भी नहीं प्रकृति पर विजय। जब हम कहते हैं प्रकृति पर विजय, तो पांच तत्वों पर विजय, पांच तत्वों का बना ये पुतला, शरीर मुझ पर हावी ना हो। जैसे बड़ी दादी से डॉक्टर ने पूछा, आपका क्या हाल है? दादी ने कहा बहुत अच्छी हूं। डॉक्टर ने कहा इतनी सारी तो नाड़ियां लगी हुई हैं आपको, ट्यूब्स हैं, और आप कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर आपने सवाल ही गलत किया है, आपने पूछा है आप कैसी हैं, तो मैं तो आत्मा हूं, मैं तो बहुत अच्छी हूं। अगर आप मुझसे ये पूछते आपका शरीर कैसा, तो मैं बताती मैं तो बहुत अच्छी हूं। इतना तक दादियों की सूक्ष्म धारणा थी, इतना गहराई से हम तो नहीं जाते हैं ना। इस प्रकृति पर विजय, पांच तत्वों पर विजय। बाबा कभी कभी मुरली में कहते, बच्चे कहते हैं बाबा यहां गर्मी है, यहां सर्दी है, यहां ये है। पता ही नहीं लगता। और तीसरा, अपनी नेचर पर विजय, नेचर क्योर। कभी हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरी बचपन से नेचर है, मैं बचपन से ऐसे पली हूं, बड़ी शान से बोलते हैं। ये नहीं समझते कि हम उसके गुलाम, अपनी नेचर के गुलाम हैं। जैसे मकड़ी जाला बुनती है और उसमें फंस जाती है, हम भी उसी तरीके से अपने नेचर की जाल में फंस जाते हैं। और उस नेचर को खत्म करने के लिए, जैसे मकड़ी को जाल खाना पड़ता है तभी फ्री होती है, हमको भी इस नेचर को ऐसे जीतना पड़ता है। अपनी नेचर पर विजय। मेरी नेचर कौन सी है? बाबा की दी नेचर ही मेरी नेचर है। दैहिक दुनिया की नेचर थोड़ी है, हम तो ऐसे चले, हम तो ऐसे। बाबा को बिल्कुल पसंद, दादियों को ये सेंटेंसेस पसंद नहीं। चौथा, औरों की प्रकृति पर भी विजय। औरों की प्रकृति अर्थात औरों के संस्कार, उस उनके संस्कार मुझ पर हावी हो। व्हाई? ऑब्स्टिकल रेस होती है, उसमें कहीं पर आपको चाड़ी चढ़नी पड़ती, कहीं दरी के नीचे से निकलना पड़ता, कहीं टेढ़े बांक के रास्ते जाना पड़ता, कहीं कुछ करना पड़ता है। तो ये ऑब्स्टिकल रेस, जिससे बाहर निकलना बाबा ने मुझे सिखाया। आज सारा रोला संस्कारों के टकराव का है, पर्सनैलिटी क्लैशेस का है, ईगो क्लैशेस का है। हम प्रकृति जीते किस हिसाब से प्रकृति जीते? जिसको महाराजा बनना है वो सब कुछ समाता है। ये चेक करें, अभोक्ता। अगर मुझे दुख सुख फील होता है, हर शोक फील होता है, तो मना अभोक्ता नहीं है, फिर असोचता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं को संकल्प विकल्प के चक्र से, उसकी उधेड़ बुन से मुझे अपन को न्यारा करना है। देवताएं ज्यादा सोचते हैं क्या? आज बाबा ने कहा देवताएं एडवाइजर नहीं रखते हैं, मंत्री नहीं रखते, वजीर नहीं रखते। इतनी क्लीन और क्लियर बुद्धि होती है, जो करना है वही इमर्ज होता और हो जाता है फिनिश। ये असोचता, डोंट थिंक, ज्यादा सोचो मत। एक समय था कोई ज्यादा सोचता, हम कहते थे बड़ा इंटेलिजेंट है, एक मिनट में इतनी सारी बातें कर लेता है, हम उसको बड़ा अच्छा बुद्धिमान मानते थे। बाबा कहते बुद्धिमानों का सद्बुद्धिमान नहीं है, जो सद्बुद्धिमानों को ज्यादा नहीं सोचता वो एक्यूरेट सोचता है, जो करना वही सोचता है, जो सिद्ध होना होता है वही इमर्ज होता है। ये सद्बुद्धिमान की निशानी है, इसका अभ्यास चाहिए। आगे चलो, अब समय है हम अपने फाइनल स्वरूप का आवाहन करें। कब तक हम ये गीत गाते रहेंगे, मेरे में ये कमी है, ये कमी है? कब तक? संगम समाप्त होने को है। अभी तक हम कंप्लेन करें, मेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुझे ये होता है, तो मेरी सोच कहां पर है? कमजोरियों के बारे में सोचती हूं और कमजोरियों के बारे में सोचने के कारण दिल शिकस्त होती हूं कि मेरे में इतनी सारी बातें हैं। मीठा बाबा, हम बच्चों को कमजोर कॉन्शियसनेस नहीं परंतु शक्ति कॉन्शियसनेस, शक्तिशाली, अपने उस कंप्लीट दैवी स्वरूप को, आप कैसे होंगे देवता, अपने उस देव स्वरूप का आवाहन करिए। और देव स्वरूप का आवाहन करते अपनी वो चाल चले, देवता हम आपस में देवता है, तो ना अपनी कमजोरी दिखाई देगी ना हमें दूसरों की कमजोरी दिखाई देगी। ठीक है, एक बात और, वो है फुल स्टॉप लगाने की आदत। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, फुल स्टॉप। कितनी अच्छी बाबा की मुरली लास्ट संडे की थी, जिसमें बाबा ने कहा पांचवी दौर होना है, बीते हुए वर्ष को कैसे विदाई देनी है। पास हो गया ना, ये चेक करो वो पास हुआ तो कैसे हुआ। थर्ड क्लास में पास हुए आप या पास विद ऑनर्स हुए, कैसे पास किया आपने। ठीक है, और दो चीज जिसको बाबा ने कहा एकाग्रता और अंतर्मुखता। एकाग्रता और अंतर्मुखता। इसलिए मन का मौन और मुख का मौन। और लास्ट, एक शौक पैदा करिए अपने अंदर। हम लोग बच्चे थे तो ज्यादा और तो बाहर के फंक्शंस नहीं होते थे, लेकिन हाँ योग बहुत होता था। शनिवार को शंकर जी का दिन कहते थे, और शनिवार शंकर जी के दिन योग भट्टी चलती थी दोपहर से रात तक। आज विकर्म विनाश करने का दिन है। धीरे धीरे ज्ञान बारीक होता गया, आज विकर्म विनाश करने का दिन है। सब ऐसे तपस्या में बैठते थे। अभी तो आप लोगों को कमेंट्री मिलती है, चित्र है। हमारे टाइम पर तो ना चित्र होते थे ना कोई कमेंट्री होती थी, कुछ नहीं, बस बैठ जाओ। बैठ जाते थे बिना हिले डुले। तो विक्रम विनाश करने हैं हमको, विक्रम विनाश करने हैं। अपनी सतो प्रधानता को इमर्ज करिए। आप कैसी सतो प्रधान आत्मा हैं, इसको इमर्ज करिए। जाना है किसी ने सतो में रजो में जाना है कोई ने सतो प्रधान। ठीक है, इस समय की, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं, आप सब मेजॉरिटी गृहस्थी हैं, तीन चीजें अपनी कायम रखिए, चार। पहला वैराग्य, दूसरा उपराम, तीसरा साक्षी दृष्टा, और चौथा ट्रस्टी। ट्रस्टी वैराग्य की शुरुआत, उसके बाद उपराम, साक्षी होकर के पार्ट प्ले करो, ट्रस्टीशिप की भावना रखो। ट्रस्टी माना, जो कुछ है बाबा आपका है, अब बाबा मुझे कहता बच्चे इसको तुम संभालो, तो मैं इसको बाबा की चीज समझ करके संभालू, उससे मेरापन और मैंपन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है, नहीं तो योग करेंगे। आत्मा भाई भाई है,
आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखना, क्योंकि फिजिकल फॉर्म फीमेल का हो और भाई भाई समझना थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है।
बाबा ने आज ही कहा है शायद कि अगर शरीर दिखाई देता है ना तो फरिश्ता देखो, शरीर को नहीं देखो फरिश्ता देखो। आत्मा बिंदु नहीं दिखाई देती ना, हर जाने चिंता नहीं करो, शरीर दिखता है, शरीर में फरिश्ते को देखो, ये तो कर सकते हैं ना। और सारी बातें तो प्रैक्टिकल करने की है ना, क्वेश्चन की तो मार्जिन ही नहीं। क्वेश्चन है, नहीं तो चलो 5 मिनट अपने आप को देवता, अपना दैवी स्वरूप, आप कैसे देवता होंगे, कौन से देवता होंगे, कौन सी देवी होंगे, उस स्वरूप को इमर्ज कर,